Friends, I am glad so many of you participated in the Pariyatti and Patipatti seminar of Dhamma. So many scholars, intellectuals, educationalists, doctors, engineers, business executives. It is good that all of you tasted Dhamma. The seminar was not meant merely for intellectual entertainment. The Patipatti part was very important. And you all participated in that. I am grateful to all of you. You gave me a wonderful opportunity to serve you in Dhamma, in Patipatti Dhamma. I heard the conclusions of the seminar. They are good, healthy. The main conclusion is to have research made both in the words of Buddha so that the technique which was lost to this country and to the humanity at large, of course, kept in its pristine purity for generations in the neighboring country. Yet by making research on the words of Buddha, this technique which was lost will become clearer. No confusions will be there for students to practice it. The Pariyatti, the theoretical aspect of Dhamma, will help a student on the path of Patipatti, the practice of it. And then the research to be made on the students as to how this technique helps them in building up noble human qualities in them, an improvement in the behavior of the individual, an improvement in the social structure, improvement all around. Such a research will prove the efficacy of this wonderful technique, scientific technique, universal technique. But the biggest research is the research to be made by each individual within oneself. The practice of Vipassana is nothing but a research in itself. One has to explore the truth within the framework of the body, the truth pertaining to the law of nature, universal law of nature. The darkness of ignorance within oneself can only be removed by making a search of the light of Dhamma within oneself. And this will help one to come out of all the miseries of burning in raga, in dvesha, in moha, craving, aversion, illusion, delusion. This is what the Lord wanted. when he said, Kumiha Sukimanandu Nichangpa Jalate Sati Nichangpa Jalate Sati Andhakare Nayunadu Padipanganagavesatha Nichangpajalate Burning, day and night burning. Continuously burning, burning in the fire of craving, burning in the fire of aversion, burning in the fire of ignorance. What you will gain by these merrymakings, entertainments outside, make a search of this truth inside, make a search of the lamp of Dhamma within, so that you come out of the darkness of ignorance, come out of all your misery. This is what each individual has to do. And this is what the technique of Vipassana is for. Not merely for intellectual entertainments. Not just to establish the superiority of this particular sect or that particular sect, this particular dogma or that particular dogma, this particular belief or that particular belief, this philosophy or that philosophy. Vipassana is not for that. Vipassana is to make a search of the truth, the law, universal, that is Dhamma, within oneself at the experiential level. The truth has been expounded, explained well by the enlightened person. There are books, scriptures, there are learned people who will again explain what the truth is. But this itself is not sufficient. Each individual has to make a search within oneself, the search of the truth, the law. Look how I am burning. Every moment I am burning in craving, in aversion, in ignorance, in craving, aversion, ignorance. And look, there is a way to come out of it. And here is a way. Just observe. Just observe it at the level of your sensations. You are burning not merely at the mental level. Look, you are burning. The entire mind and matter phenomenon, burning, burning. So much of misery. Just start observing it, and you will find how you are coming out of it. Layers after layers of these accumulated impurities will get peeled off. If you observe objectively, maintaining perfect equanimity, you have tried that in the Patipatti part, and each one of you have started making the search of the truth within. This was a very tiny step, but a very valuable step. First step, right step, in right direction, on the right path. And the path is within oneself. Explore the truth within, the universal truth. The more and more one experiences reality within oneself, the more and more one comes out of the narrow self-centeredness. Vipassana and self-centeredness cannot go together. The inflated ego gets dissolved. And the law of nature becomes so clear. It is applicable not only to me, but to everyone, all beings. Applicable to everything, animate, inanimate. The law is law. Then these artificial barriers between man and man, which are so harmful, which go against the harmony and peace of the society, all those barriers are going to get broken, shattered.
बाहर भीतर एको जानो यह गुरु ज्ञान बताई रे जन नानक बिन आपा चिन्हे कटे न भ्रम की काई रे
द लॉ इज द सेम आउटसाइड इनसाइड द एनलाइटेंड पर्सन explains this by his own experience, and he wants us to know it at the experiential level. The experience can be made only within the framework of the body. Within the framework of the body, if one starts realizing the truth pertaining to oneself, what is this I? I keep on saying I. What is this I? This physical structure? Is this I? This mental structure? Is this I? The combination of the two? Is this I? Or is there something beyond this mind and matter which is I? Let it be investigated. As one starts investigating it at the experiential level, the sages and saints have said, know thyself. Know thyself not merely at the intellectual level, know thyself at the actual level, at the experiential level. Then the entire law of universe, the law of nature, the universal law of nature becomes so clear. As one progresses on the path of Dhamma, on the path of truth, at the experiential level, one starts realizing, what is the difference between me and this person? Between me and this person? Between this person and that person? All are alike. Not because a particular dogma says so, a philosophy says so. Now at the experiential level you started understanding, all are alike. Everyone, whether he's a Hindu or a Muslim or a Jain or a Christian or a Parsi or a Sikh, an Indian or a Burmese or an American or a Russian, makes no difference. Everyone. When one generates defilements in the mind, anger, hatred, ill will, passion, fear, any defilements, one is bound to become agitated. Nichyanapajjalite sati. All the time, everyone is generating these defilements and is burning, unhappy. I've experienced within myself. This is happening everywhere. So what is the difference? What is the difference between a Hindu or a Buddhist or a Christian or a Muslim? What is the difference between a Brahmin or a Shudra? One from this caste or that caste, of this community or that community, of this color or that color, of this shape or that shape, of this appearance or that appearance. What difference? No difference. This is universal. Law is universal. As soon as someone starts generating a defilement in the mind, the nature starts punishing this person then and there. One is bound to become miserable. The nature does not favor a particular sect. The nature does not favor a particular community. The nature does not favor a particular person. Anyone who generates defilement in the mind is bound to become miserable. And if one wants to come out of misery, there is no other way. The only way is come out of these defilements. And by my own experience, every meditator will realize, by my own experience I understand, look, as soon as the defilement is gone, I start experiencing peace and harmony within. Again, this is the law of nature. Every person who eradicates the impurity from the mind is bound to experience peace and harmony. Peace and harmony is not the monopoly of a particular community, a particular sect. Nothing doing. Law is law, applicable to one and all. This becomes so clear. If at all there is a difference between a human being and another human being, the only difference is one who is established in Dhamma and who has come out of misery, or is getting established in Dhamma and coming out of misery, and one who is so ignorant that he keeps on multiplying his own misery. This is the difference. And this is a difference which has nothing to do with a caste or a community or sect or anything. And this is a difference which can be overcome. Somebody who is so ignorant that all the time is multiplying his own impurities, and therefore burning, can come out of it, and enjoy the same peace and harmony as the other person who has come out of it. It is open for one and all, no barrier. Barrier between human being and human being, and barrier between all beings will go away. All beings are miserable, all beings are suffering. If Dhamma arises in its pristine purity, not the sectarian Dhamma, no sectarian Dhamma is going to help us in any way. On the other hand, again it will create differences between this community and that community. Dhamma is universal. A Buddha teaches universal Dhamma, the law of nature. That is why he is Buddha, because he is enlightened. He is the greatest scientist who has explored the truth within himself at the experiential level and has found out if this happens, the result is bound to be this. If you do not want this result, then better not allow this to happen. If someone places his hand on the fire, one is bound to get burned. If one doesn't want this burning, then better keep your hand away from the fire. As simple as that. What Hinduism about it? What Buddhism about it? What Sikhism about it? This is the law of nature. And this is Dhamma. The more and more one practices Vipassana, all these barriers of casteisms, sectarian barriers, communal barriers, they all go away. Racial barriers, they all go away. One starts feeling one with the entire humanity. Human being is human being. Oh, everybody is suffering as I used to suffer. And still, whenever I generate defilement, I still suffer. Similarly, others are also suffering. If they get this wonderful technique, the wonderful Dhamma, oh, they will come out of their misery, because they will come out of their defilements. This technique is universal technique. You practiced for 8 or 9 days and you found there is no sectarianism involved in it. You started observing your respiration, and respiration is universal. One cannot say that this respiration is Hindu or that respiration is Muslim or Christian or Buddhist. Respiration is respiration. And then you switched over observing the sensations on the body. What Hinduism about it? What Buddhism about it? This is law of nature. Everyone has sensations on the body and can observe those sensations, calling oneself a Hindu or a Buddhist or a Christian or a Sikh or by any name, it makes no difference. The technique gives the result, the same result to one and all who practice. Oh, a universal technique based on the universal law of nature, then all this madness of sectarianism will go away. The madness of racial feeling, I am of a superior race, will go away. Or the inferiority complex of I am of a lower caste will go away. Human being is human being. The only defect, if at all I have the defect, is that out of ignorance I keep on generating defilements. And with this technique, I can develop my wisdom, and I can come out of the ignorance and come out of the old habit of generating defilements. I can purify my mind, I can come out of all my misery. And similarly, everyone who is suffering can come out of the misery by the same technique. It will become so clear. The world will be a better world if the madness of sectarianism, the madness of casteism, the madness of racial superiority, etc., they all go away. The world will be a better world to live in. more peaceful, more harmonious. And it cannot go away by mere sermon. It cannot go away by your penal codes even. It can only go away when each individual starts realizing the truth of Dhamma, the law. Look, it is applicable on one and all. Everyone has the facility, has the opportunity to reach the highest goal and become a liberated person, an enlightened person. No race will become a barrier. No, nothing else can become a barrier. Anyone, a normal human being, can walk on the path and reach the final goal. May more and more people of this country, and not only of this country, all around the world, more and more people suffering with these defilements come in contact with this wonderful Dhamma, the wonderful technique of Vipassana, and come out of their misery, come out of their unhappiness, and enjoy peace, enjoy harmony. Peace and harmony for all. Real happiness for all. May the new year bring light of Dhamma to dispel the darkness of ignorance throughout the world. May all come out of their misery. May all enjoy real peace, real harmony. हिंदी भाषियों के लिए थोड़े से शब्द हिंदी में कहूँ, ये जो सम्मेलन हुआ अच्छा ही हुआ। इस सम्मेलन के बहाने ही इतने विद्वान पढ़े लिखे, भिन्न भिन्न विद्याओं में, शिल्पों में निपुण लोग ऐसे शिविर में आ सके और धर्म का रस चख सके। अगर ये सम्मेलन केवल बुद्धि विलास के लिए होता, केवल तर्क वितर्क के लिए होता, वाद विवाद के लिए होता, केवल इसलिए होता कि ये स्थापित करें कि हमारा ही संप्रदाय सबसे अच्छा संप्रदाय है, केवल इसलिए होता कि ये स्थापित करें कि हमारी ही मान्यता सबसे अच्छी मान्यता है, तो निकम्मा होता, हानिकारक होता। इसलिए नहीं आए यहाँ, तो आए बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझे भी। मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना ही चाहिए। बुद्धि के स्तर पर धर्म को समझे भी और फिर उसे अनुभूति के स्तर पर उतारे। तो ज़्यादा समय तो अनुभूति पर उतारने के लिए लगाया, बड़ा अच्छा हुआ, मंगल हुआ। इतने लोगों ने धर्म का रस चखा, अपने भीतर पढ़ते थे, विवाद करते थे, बातचीत करते थे, उसका अपना लाभ एक बुद्धि के स्तर पर। लेकिन जो चखना है तो चखने का लाभ, तो चखने का लाभ। रसगुल्ला बहुत मीठा है, रसगुल्ला बहुत मीठा है, इस पर हजार चर्चा कर ले और विवाद कर ले, क्यों मीठा है, इसमें चीनी पड़ी है ना, इसलिए मीठा है, चीनी ज़्यादा पड़ी है, कम पड़ी है, बहस कर ले। अरे भाई, जब तक जबान पर नहीं रखे तो कैसे जाने कि रसगुल्ला मीठा है। तो यहाँ ये भी समझने आए कि रसगुल्ला क्यों मीठा है, इसमें चीनी पड़ी है। लेकिन ये भी करने आए कि चख के देखे रसगुल्ला मीठा है, तो चख के देखा सबने, बड़े मंगल की बात हुई, बड़े मंगल की बात हुई। बहुत से प्रस्ताव पास किए, अभी अभी सुने, अच्छी शुभकामनाएं हैं सारे दुखियारे विश्व के लिए। किस प्रकार विपश्यना फैले, मुख्य बात तो ये, किस प्रकार ये कल्याणकारी विद्या लोगों को मिले। इसलिए नहीं फैले कि संसार के सारे लोग अपने को बौद्ध कहने लगे। अरे क्या मिल जाएगा, संसार के सारे लोग अपने को बौद्ध कहने लगे तो क्या मिल जाएगा किसी को, निकम्मी बात हुई ना। संसार के सारे लोग धर्म में स्थापित हो जाएं, और धर्म का मतलब बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, धर्म का मतलब धर्म, सार्वजनिक धर्म, सार्वदेशिक धर्म, सार्वकालिक धर्म। अरे जो कुदरत का कानून है वो धर्म। यही तो सीखा ना यहां रह करके कि सचमुच कुदरत का कानून है, रित है, यही धर्म नियामता है। जैसे मैं अपने भीतर विकार जगाकर जलने लगता हूं, व्याकुल हो जाता हूं, अरे सभी तो ऐसे होते हैं ना, एक भी तो नहीं बचा। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो जाता है, दुखियारा हो जाता है। कुदरत का नियम है ना, कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती। आग पर हाथ रखें, हाथ जलता ही है, हिंदू रखें कि जैन रखें कि बौद्ध रखें कि ईसाई रखे कि भारतीय रखे कि बर्मा रखे कि जो रखे, आग पर हाथ रखेगा हाथ जलेगा, कुदरत का नियम है। क्योंकि आग का ये धर्म है जलना और जलाना, सार्वजनिक धर्म है। इसमें हिंदू बने की क्या बात है, इसमें जैन बने की क्या बात है, इसमें बौद्ध बने की क्या बात है। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जब विकार जगाते हैं तो जलेंगे ही, ये कुदरत का नियम है। और ये कल्याणकारी विद्या मिल गई। कैसी कल्याणकारी विद्या मिल गई कि अपने इस स्वभाव को, जो प्रतिक्षण राग की अग्नि जगाने वाला, प्रतिक्षण द्वेष की अग्नि जगाने वाला, इस स्वभाव को पलटने का एक रास्ता मिल गया। राग जगाना बंद करें, द्वेष जगाना बंद करें, विकार जगाना बंद करें, तो भीतर की आग लगाना बंद करें। नई आग जलाएं नहीं, पुरानी बुझती जाए, बुझती जाए, बुझती जाए, सारी बुझ गई तो बस निर्वाण हो गया ना। वाण जलने को कहते हैं ना, हो गया निर्वाण, जलना बंद हो गया। अरे जलना बंद हो जाएगा केवल बुद्धि विलास से नहीं होगा ना भाई, इसको बंद करने के लिए भीतर कोई काम करना पड़ेगा, उन गहराइयों तक काम करना पड़ेगा जहाँ की प्रतिक्षण राग की अग्नि जलाए जा रहे हैं, द्वेष की अग्नि जलाए जा रहे हैं, वहाँ रोक लगानी पड़ेगी। यही विपश्यना सिखाती है। और सारा का सारा रास्ता कितना सार्वजनिक, इसमें से गुजरता है तो आदमी समझता है कितना सार्वजनिक है। सांस का सहारा लिया, शुद्ध सांस का सहारा लिया, कहीं इसके साथ कोई बुद्ध का नाम नहीं, कोई बुद्ध की प्रतिमा का ध्यान नहीं, या किसी अन्य देवी का, देवता का, ईश्वर का, ब्रह्म का, संत का, महापुरुष का, किसी का ध्यान नहीं, किसी का नाम नहीं। साथ नाम जोड़ा तो संप्रदाय बन गया, क्योंकि ये नाम तो अमुक संप्रदाय से जुड़ा हुआ, वो नाम अमुक संप्रदाय से जुड़ा हुआ, सार्वजनिक बात कैसे होती। तो सांस का ही सहारा लिया जो सार्वजनिक है। सांस न हिंदू होता है, न जैन होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, सांस सांस है, कुदरत का एक कानून है। हर जीवित प्राणी इस प्रकार सांस लेता है, सभी लेते हैं। और आगे बढ़े तो शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखने लगे। अब ये भी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न जैन है, हिंदुओं को एक प्रकार की होती हो, बौद्धों को दूसरे प्रकार की होती हो, हिंदुओं को तो ये संवेदनाएं व्याकुल करती हो, मुसलमानों को न करती हो, तब तो भाई कोई खास बात हुई, ये हिंदू संवेदना अलग, ये बौद्ध संवेदना अलग। नहीं ना, करके देख लिया ना, अनेक साथ तपे हैं उन सब से भी मिलके देख लिया ना, एक जैसी अनुभूति सबकी। विकार जागता है, उसकी वजह से दुखद संवेदना जागती है, व्याकुल हो ही जाता है, कोई हो व्याकुल हो जाएगा। विकार जगाना बंद कर दे, ये दुखद संवेदना जागनी बंद हो जाएंगी। अरे निकल गया ना, दुख के बाहर निकल गया ना, कुदरत का कानून इतनी अच्छी तरह समझ में आएगा, इतनी अच्छी तरह समझ में आएगा। बाहर बाहर से जो अनुसंधान की बात की है, अच्छा है भगवान की वाणी पर अनुसंधान करें, क्योंकि लुप्त हो गई साधना, ही लुप्त हो गई देश से, तो ये किस प्रकार की जाती थी यही भूल गए। तो कहीं शब्द रहे भी तो उन शब्दों का अर्थ नहीं ठीक है, तो अनुसंधान होना चाहिए ताकि ये विद्या उजागर हो, बहुत अच्छी तरह लोगों की समझ में आए, और करने वाले को भी आश्वासन हो कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना, जैसे भगवान ने बताया वैसे ही कर रहा हूँ ना, तो अनुसंधान हो, बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही और भी अनुसंधान हो, शोध हो कि ये विद्या के उपयोग करने से अमुक लाभ हुआ, अमुक लाभ हुआ, व्यक्ति को हुआ, समूह को हुआ, समाज को हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुआ, अच्छी बात है। इससे लोगों में प्रेरणा जागेगी कि अच्छा काम है, करना चाहिए, ये सब अच्छा है अनुसंधान का जो निर्णय किया। पर सबसे बड़ा अनुसंधान तो अपने भीतर, अपने भीतर अनुसंधान करना पड़ेगा। पहले दिन जब आरंभ हुआ तब कहा था कि भगवान की देशना ही, जिसे सुदेशना कहें, इससे अच्छी देशना और क्या होगी, इससे अच्छे उपदेश क्या होंगे, इसीलिए सुदेशना कहा। सुदेशना शब्द ब्रह्म देश में अनुसंधान का पर्यायवाची हो गया, तो भगवान की सारी वाणी अनुसंधान के लिए है। अनुसंधान करो, खोज करो, अपने भीतर धर्म की खोज करो, कुदरत के कानून की खोज करो, सच्चाई की खोज करो, अनुभूतियों के स्तर पर करो, केवल मान्यताओं के स्तर पर नहीं, केवल तर्कों के स्तर पर नहीं, अनुभूतियों के स्तर पर अनुसंधान करो। को मिहासो कि मानंदो ने चंग पजलते सते अंधकारे नयो नदो प्रदीपंग न गवे सथ। अरे प्रदीप क्यों नहीं खोजता भाई, ये धर्म का दीपक क्यों नहीं खोजता? और उसकी खोज भीतर होगी, ये बाहर बाहर के आमोद प्रमोद में समझता है कि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मेरा जलना दूर हो जाएगा। अरे नहीं दूर होता भाई, करके देखो जरा पता लगेगा, भीतर की सच्चाई देखोगे तो पता लगेगा। इन बाहर बाहर के आमोद प्रमोद में भुला सकते हो अपने दुख को थोड़ी देर के लिए। बड़ा व्याकुल हुआ तो गम गलत करने के लिए थोड़ा सा नशा पता कर लिया, और कुछ नहीं, कहीं सिनेमा में चला गया, कोई खेल तमाशे में चला गया, भूल गया थोड़ी देर। अरे भूल ही गया ना, छुटकारा तो नहीं हुआ ना, फिर और जोरों से जागने वाला है। भीतर तो आग जल ही रही है ना, तो क्या मिलेगा इस आमोद प्रमोद में? चल रहा है, प्रतिक्षण जल रहा है, दिन रात जल रहा है, राग की अग्नि में जल रहा है, द्वेष की अग्नि में जल रहा है, मोह की अग्नि में जल रहा है। अपने भीतर देखे तो पता लगे ना, अपने भीतर देखना ही विपश्यना है, यही सुदेशना है, यही अनुसंधान है। अपने भीतर देखने लगता है तो पता लगता है कैसा कुदरत का कानून है, ऐसा ऐसा होगा तो ये परिणाम आएगा ही, ये परिणाम हमें नहीं चाहिए तो ऐसा ऐसा न होने दें। विकार जगाएगा तो व्याकुल होगा ही, व्याकुल नहीं होना है तो विकार से छुटकारा पाएं। ये बात बुद्धि से समझ के ही नहीं रह जाएगा, विकारों से छुटकारा पाने का रास्ता पा लेगा और निकलने लगेगा। भले आठ ही दिन का एक ही शिविर किया तो भी बात तो समझ में आ गई सबके, अनेकों से मिला, अनेक मुझसे आके मिले तो लगा सब संतुष्ट हैं, सबके इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऐसा सार्वजनिक रास्ता है जो सर्व कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है। किसी एक संप्रदाय का भला करे ऐसा नहीं, प्रकृति किसी एक संप्रदाय का पक्षपात करती नहीं ना, तो सब पर एक जैसा कानून लागू होता है। जैसे जैसे इस विद्या में पकते चले जाएंगे, अभी तो शुरू किया है, तो विपश्यना में कोई आदमी पका या नहीं उसको मापने का एक मापदंड ये भी है कि अगर सचमुच पका है विपश्यना में, सचमुच पका है धर्म में, तो ये मनुष्य मनुष्य के नकली विभाजन बना लिए, जाति को लेके बना लिए, वर्ण को लेके बना लिए, रंगों को लेके बना लिए, प्रदेशों को लेके बना लिए, देशों को लेके बना लिए, दार्शनिक मान्यताओं को लेके बना लिए। कैसा पागलपन छाया हुआ, और इतना परस्पर विरोध, इतना परस्पर द्वेष, दुख ही दुख बढ़ाने का काम। जैसे जैसे भीतर जाएगा तो कुदरत का कानून समझ में आएगा कि बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई रे। कोई सदगुरु होगा तो कैसे सदगुरु हुआ? उसने सच्चाई का अनुसंधान अपने भीतर किया और सारी सच्चाई जान ली तो ये भी जान लिया कि बाहर भीतर कुदरत का कानून एक ही है। लेकिन बाहर का जो कुदरत का कानून है वो केवल बुद्धि के स्तर पर समझ सकते हैं, अनुभूति के स्तर पर नहीं जान सकते। तो जन नानक बिन आपा चिन्हे, अपने आप की खोज किए बिना भीतर, जहां अपने आप की खोज करने लगे तो अनुभूति के स्तर पर सच्चाई सामने आने लगी। तो नानक जैसा महान संत कहता है और जानकर कहता है जन नानक, क्योंकि गुरु ने कहा बाहर भीतर एको जानो, मानने की बात नहीं, जानो, अनुभूतियों से जाना जाता है और श्रद्धा से या तर्कों से माना जाता है। तो केवल मानने से बात बनती नहीं, जानो, अनुभूति पर उतरी बात। तो अपने आप को जानने का काम शुरू किया तो सारे भ्रम निकल गए। समझता था कि मैं तो अमुक जात में जन्मा हूँ तो बड़ा महान हूँ, कितना भ्रम लिए चल रहा है। समझता था कि मैं तो अमुक जात में जन्मा हूँ इसलिए बड़ा ओछा हूँ, कैसा भ्रम लिए चल रहा।
समझता था कि मैं तो अमुक संप्रदाय का हूँ इसलिए बड़ा महान हूँ, और वो उस संप्रदाय का इसलिए बड़ा छोटा है। मैं तो ऐसी दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूँ इसलिए बड़ा महान हूँ, वो देखो वैसी दार्शनिक मान्यता मानने वाला बड़ा छोटा है। मैं इस प्रदेश में रहने वाला इसलिए बड़ा महान हूँ, दूसरे प्रदेश वाले गए गुजरे हैं। मैं इस देश में रहने वाला इसलिए बड़ा महान हूँ, दूसरे देश वाले बड़े गए गुजरे हैं। अरे कैसे विभाजन कर लिए रे, कैसे विभाजन कर लिए, बावलेपन के विभाजन टूटेंगे, विपश्यना करेगा, और ये नहीं टूट रहे हैं तो विपश्यना कर नहीं रहा, विपश्यना के नाम पर एक कर्मकांड शुरू कर दिया, फिर धोखे में पड़ गया। सचमुच अगर विपश्यना ठीक से कर रहा है जैसे करना चाहिए और धर्म जाग रहा है तो सारा कुदरत का कानून इतना स्पष्ट हो जाएगा। अरे भाई आदमी आदमी में क्या भेद है रे, प्राणी प्राणी में ही भेद नहीं, जो विकार जगाता है व्याकुल हो जाता है, जो विकार जगाता है व्याकुल हो जाता है, विकारों से मुक्त होता है व्याकुलता से मुक्त हो जाता है। अब वो कोई हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी रंग का हो, किसी देश का हो, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता ना, किसी सांप्रदायिकता का हो, किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता ना, खूब समझ में आने लगता है, खूब समझ में आने लगता है। तो इस मापदंड से अपने आप को भी माप के देखते रहेंगे, मेरे भीतर ये बावलापन दूर हुआ कि नहीं, मुझ में कहीं जाति का अहंकार तो नहीं, या मुझको जाति की बात लेकर हीन भाव तो नहीं, या मुझ में कहीं संप्रदाय का अहंकार तो नहीं, या मुझ में कहीं कोई राष्ट्रीयता को लेकर के, प्रादेशिकता को लेकर के, या कोई दार्शनिक मान्यता को लेकर कोई अहंकार तो नहीं, मैं औरों को ओछा तो नहीं समझ रहा। बात समझ में आने लगेगी, अनुभूति के स्तर पर आने लगेगी, फिर तो यही समझ में आएगा मनुष्य मनुष्य में भेद है, तो इतना ही भेद है कि एक व्यक्ति धर्म से हीन है, बौद्ध धर्म से नहीं, जैन धर्म से नहीं, ईसाई धर्म से नहीं, धर्म से हीन है, अंधेरे में है। कितना अंधेरा, अंधकारे नो नद्दो, डूबा है अंधकार में, होश ही नहीं, पता ही नहीं, जानता ही नहीं भीतर भीतर क्या हो रहा है, हमारे कुदरत के कानून को नहीं जानता। इस अंधकार में है तो राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, मोह पैदा करता है, व्याकुल ही व्याकुल होता है, स्वयं भी व्याकुल होता है, औरों को भी व्याकुल करता है। एक दूसरा व्यक्ति अंधकार के बाहर आ गया या आ रहा है तो अपने भीतर की सारी सच्चाई को जानते हुए विकार नहीं पैदा करता, जो विकार पहले हैं उनको निकालता है तो भीतर निर्मलता आती है, शांति आती है, प्यार जागता है, मैत्री जागती है, करुणा जागती है। अब ये आदमी निश्चित रूप से उस पहले आदमी से अच्छा है, ऐसा समझ में आएगा। मनुष्य मनुष्य का यही विभाजन हो सकता है, दूसरा कोई विभाजन नहीं। और ये व्यक्ति जो अंधकार में है और जिसको हम कहें कि इस धर्मवान व्यक्ति से नीचा है, उसके लिए भी पूरी छूट है। ऐसा नहीं कि अमुक कुल में जन्म गया तो अब तो बस सारे जन्म भर ऐसे ही रहना पड़ेगा, अमुक जात में जन्म गया तो ऐसे रहना पड़ेगा, अमुक कुल का है, अमुक जात का है, अमुक संप्रदाय का है, कोई भी बाधा नहीं। हर व्यक्ति धर्म के रास्ते कदम कदम चलते हुए उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है जो कि दूसरा कोई व्यक्ति चलते चलते पहुंच जाए। कहे अपने को हिंदू कहने वाला हिंदू ही कहे, मुसलमान कहने वाला मुसलमान ही कहे, बौद्ध कहने वाला बौद्ध ही कहे, जैन कहने वाला जैन ही कहे, सिख कहने वाला सिख ही कहे, अच्छी बात। कुछ समूह, एक समाज के थोड़े से लोग अपने आप को इस नाम से पुकारते हैं, पुकारते हैं, क्या बुरी बात हुई उसमें, लेकिन पागलपन नहीं है। वो जो आसक्ति है संप्रदाय की कि अपने को महान मानना, दूसरे को ओछा मानना और यो द्वेष फैलाना, ये निकल जाएगा। हिंदू हिंदू ही अपने को कहता रहेगा पर अच्छा आदमी बन जाएगा, अच्छा भला आदमी बन जाएगा। मुसलमान अपने आप को मुसलमान ही कहता रहेगा, अच्छा आदमी बन जाएगा, भला आदमी बन जाएगा। बौद्ध अपने को बौद्ध ही कहता रहेगा, अच्छा आदमी बन जाएगा, भला आदमी बन जाएगा। अरे धर्म तो हमको अच्छा आदमी बनाने के लिए है ना, भला आदमी बनाने के लिए है ना, स्वयं भी कैसे सुख शांति का जीवन जिए अपने भीतर, औरों के लिए भी कैसे सुख शांति ही सुख शांति, सुख शांति ही सुख शांति। जहाँ अपने भीतर अशांति पैदा करने लगे, औरों की सुख शांति भी भंग कर देंगे, हम भी दुखी होंगे, औरों को भी दुखी बनाएंगे। सारे जीवन भर यही करते रहे, अपने को हिंदू कहा तो भी ये करते रहे, मुसलमान कहा तो भी ये करते रहे, बौद्ध कहा तो भी ये करते रहे, इस मान्यता को मानने वाला कहा तो भी ये करते रहे, उस मान्यता को मानने वाला कहा तो भी ये करते रहे, छुटकारा नहीं हुआ ना। स्वयं भी दुखी, औरों को भी दुखी बनाए, स्वयं भी दुखी, औरों को भी दुखी बनाए, तो जीना नहीं आया, जीने की कला नहीं आई। ये विद्या, ये विपश्यना, ये धर्म, सार्वजनिक धर्म, जीवन जीने की कला है। हर व्यक्ति को जीवन जीने की कला सीखनी है, कैसे सुख शांति का जीवन जिए, कैसे सुख शांति का जीवन जिए। जो जो लोग इस शिविर में आए खूब पकें। नया वर्ष आरंभ हुआ है, इस वर्ष का हर दिन का हर क्षण हर पल धर्म ही धर्म जागे, धर्म ही धर्म जागे, और खूब मंगल साध लें, अपना खूब कल्याण साध लें। ऐसा राजमार्ग मिल गया। अब तक न जाने किन अंधी गलियों में भटकते थे और बार बार पीछे कदम हटाना पड़ता था, गलती हो गई गलती हो गई। अब तो यहाँ गलती की कोई जगह ही नहीं, ऐसा राजमार्ग कदम 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 बढ़ते बढ़ते नितांत विमुक्त अवस्था तक पहुँच जाएंगे। हर व्यक्ति पहुँच जाएगा, अपना मंगल भी कर लेंगे, और जहाँ अपना मंगल करने में निपुण होने लगे देखेंगे अनेकों के मंगल में सहायक हो गए। अनेकों को दुख देना तो बंद कर ही दिया, अनेकों के सुख में सहायक हो गए, अनेकों की शांति में सहायक हो गए। भारत की एक कल्याणकारी विद्या, बहुत पुरातन विद्या, बड़ी अनमोल विद्या भारत में फिर आई है। भारत के दुखियारे लोगों को भारत की ये अनमोल विद्या मुबारक हो। भारत के दुखियारे अपने अपने दुखों के बाहर आएं, और केवल भारत के ही नहीं, अरे सारे विश्व में लोग कितने दुखियारे हैं, कितने दुखियारे हैं। ये कल्याणकारी विद्या कैसे सारे संसार में फैले, संसार के दुखियारों को अपने अपने दुखों से मुक्त करे। समय आ गया है, विपश्यना का डंका बजा है, अधिक से अधिक लोग अपने दुखों से बाहर आए, अधिक से अधिक लोग अपने दुखों के बाहर आए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्ति मुक्ति हो, स्वस्ति मुक्ति हो। भवत् सर्वमङ्गलम्।